कर्म रुचि प्रधान शून्य प्रयत्न में कभी कभी इतनी उतावली और आकुलता होती है कि मनुष्य साधना के उत्तरोत्तर कर्म का निर्वाह न कर सकने के बीच में ही चूक जाता है। मान लीजिए एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर विचरते हुए किसी व्यक्ति को नीचे बहुत दूर तक गई हुई सीढ़ियां दिखाई दी और यह मालूम हुआ कि नीचे उतरने पर सोने का ढेर मिलेगा यदि उसमें इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ ही वह उस स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा उस तथा उसका चित्त प्रफुल्ल और अंग सचेष्ट हो गए तो उसे एक एक क्षण उसे सुख से बीतता हुआ जान पड़ेगा और वह प्रसन्नता के साथ स्वर्ण राशि तक पहुँचेगा। एक प्रकार से उसके प्रयत्न काल को भी फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए। इसके विरुद्ध यदि उसका हृदय दुर्बल हो गया और उसमें इच्छा मात्र ही उत्पन्न होकर रह जाएगी तो अभाव के बोध के कारण उसके चित्त में यही होगा कि कैसे झट से नीचे पहुंच जाए। उसे एक एक सीढ़ी उतरना बुरा मालूम होगा और आश्चर्य नहीं कि वह या तो हार कर बैठ जाए या लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़े। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आता है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल से इतने पीछे पड़े कि गर्मी में ब्राह्मणों को एक पेठा देकर पुण्य की आशा करने लगे। चार आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित प्रस्तुत में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चलता रहता है, उसी का नाम उत्साह है। कर्म के मार्ग पर आनंद पूर्वक चलता हुआ उत्साही मनुष्य यदि अंतिम फल तक न भी पहुँचे तो उसकी दशा कर्म न करने वाले की अपेक्षा अधिकतर अवस्थाओं में अच्छी होगी, क्योंकि एक तो कर्म काल में उसका जो जीवन बीता वह संतोष या आनंद में बीता, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे यह पछतावा न रहेगा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। फल पहले से कोई बना बनाया पदार्थ नहीं होता, अनुकूल प्रयत्न कर्म के अनुसार उसके एक एक अंग की योजना होती है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चय की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। किसी मनुष्य के घर का कोई प्राणी बीमार है, वह वैद्यों के यहाँ से जब तक औषधि ला लाकर रोगी को न देगा और इधर उधर दौड़ धूप करता जाता है, तब तक उसके चित्त में जो संतोष रहता है, प्रत्येक नए उपचार के साथ जो आनंद का उन्मेष होता है, यह उसे कदापि न प्राप्त होगा। यदि वह रोता हुआ बैठा रहता, प्रयत्न की अवस्था में उसके जीवन का जितना अंश संतोष, आशा और उत्साह में बीता, अप्रयत्न की दशा में उतना ही अंश केवल शोक और दुख में कटता। इसके अतिरिक्त रोगी के न अच्छे होने की दशा में वह आत्मग्लानि के उस कठोर दुख से बचा रहेगा। उसे जीवन भर यह सोच सोच कर होता है कि मैंने पूरा प्रयत्न नहीं किया। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। धर्म की उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद होता है जो कर्ता को कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का समूल नाश करते हुए चित्त में जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाए, बल्कि उसी समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। कभी कभी आनंद का मूल विषय तो कुछ और रहता है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति होती है जो बहुत से कामों की ओर हर्ष के साथ अग्रसारित करती है। इसी प्रसन्नता और तत्परता को देखने लोग कहते हैं कि वे बड़े उत्साह से किए जा रहे हैं। यदि किसी मनुष्य को बहुत सा लाभ हो जाता है या उसकी कोई बड़ी भारी कामना पूर्ण हो जाती है तो उसका काम उसके सामने आते हैं। उन सबको वह बड़े हर्ष और तत्परता के साथ कराता है। उसके इस हर्ष और तत्परता को लोग उत्साह ही कहते हैं। इसी प्रकार किसी उत्तम फल या सुख प्राप्ति की आशा या निश्चय से उत्पन्न आनंद फलोन्मुख प्रयत्नों के अतिरिक्त और दूसरे व्यापारों के साथ संलग्न होकर उत्साह के रूप में दिखाई पड़ता है। यदि हम किसी ऐसे उद्योग में लगे हुए हैं जिसमें आगे चलकर हमें बहुत लाभ या सुख की आशा है तो हम उस उद्योग को उत्साह के साथ करते हैं। अन्य कार्यों में भी प्रायः अपना उत्साह दिखा कर देते हैं। यह बात उत्साह में नहीं अन्य मनोविकार में भी बराबर पाई जाती है। यदि हम किसी बात पर क्रुद्ध बैठें तो इसी बीच में कोई दूसरा आकर हमसे कोई बात सीधा तरह भी पूछता है तो भी हम उस पर झुंझला जाते हैं। इस झुंझलाहट का न तो कोई निर्दिष्ट कारण होता है न उद्देश्य। यह केवल क्रोध की स्थिति में व्याघ्यात को रोकने की क्रिया है, क्रोध की रक्षा का प्रयत्न है। अपनी झुंझलाहट द्वारा हम यह प्रकट करते हैं कि हम क्रोध में हैं और क्रोध में ही रहना चाहते हैं। क्रोध को बनाए रखने के लिए हम उन बातों से भी क्रोध ही संचित करते हैं जिनसे दूसरी अवस्था में हम विपरीत भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार यदि हमारा चित्त किसी विषय में उत्साह करता है तो हम अन्य विषय में भी उतना अपना उत्साह दिखा देते हैं। यदि हमारा मन बहुत बढ़ा हुआ रहता है तो हम बहुत से काम प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार पहले अर्दलियों से उसका मिजाज पूछ लिया करते हैं।